इशिका सेल के अंदर अकेली थी। पीरियड्स जल्दी आने की वजह से उसके शरीर ने आयरन कंज्यूम करना बंद कर दिया था और ठीक से आराम ना करने की वजह से तेजी से उसकी हालत बिगड़ने लगी थी। ऊपर से क्रिस्टल उससे नाराज थी, तो इशिका ने लेडी कांस्टेबल को किसी और फोरेंसिक डॉक्टर को भेजने के लिए कहा ताकि वो उसका चेकअप कर सके। इस बीच मालविका इशिका से मिलने के लिए जेल में आई। मालविका को आयशा ने बता दिया था कि इशिका ने आशीष का मर्डर कर दिया है और वो इस वक्त इशिका को मारने के इरादे से वहां पर आई थी। लेडी कांस्टेबल ने मालविका को रोका तो उसने अपनी पहचान इशिका की माँ के तौर पर बताई। रिकॉर्ड चेक करने पर पता चला मालविका सच बोल रही है, तो लेडी कांस्टेबल ने उसे रोका नहीं। दरवाजे की आवाज़ सुनकर इशिका ने धीरे से कहा, कांस्टेबल इतनी जल्दी वापस आ गई? इशिका को ठीक से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी मालविका उसके पास आई और उसके बालों को सहलाते हुए बोली, घबराओ मत, माँ आ गई है, अब वो तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखेगी। इशिका डर के थोड़ा पीछे खिसक गई। जैसे कि दिशांक ने बताया था कि वीकनेस के बाद में उसे हैल्यूसिनेशन होने लगता था और वो ट्रॉमा में चली जाती थी, अब भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। इशिका का दिमाग उन यादों में चला गया था जब वो लगभग 5 साल के आसपास थी। इशिका के दिमाग पर यही चल रहा था कि ठंड की वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई थी और हमेशा की तरह मालविका ने उसे कमरे में बंद कर दिया था। राधिका उसके पास आई और उसकी दवाई दी, लेकिन राधिका के जाते ही मालविका ने इशिका को उल्टी करने पर मजबूर किया और उसने उल्टी से सारी दवाई बाहर निकाल दी थी। मालविका उसके कान के पास आई और उसके बाल पकड़कर बोली, तुझे जीने का कोई हक नहीं है, तो इसी तरह बीमार सड़ती रहे और एक दिन मर जाएगी। इशिका को भले ही इस वक्त सच और सपने में फ़र्क ना नज़र आ रहा हो, लेकिन मालविका सच में उसके पास में थी और उसके बालों को पकड़कर बोली, तेरी हिम्मत कैसे हुई आयशा को नुकसान पहुंचाने की और मेरे भाई को मारने की? आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी और तेरी जान ले लूंगी। इशिका बिल्कुल वैसे बिहेव कर रही थी जैसे वो 5 साल की बच्ची हो। वो खुद में ही सिमटी जा रही थी। उसने धीमी आवाज़ में कहा, माँ मुझे माफ़ कर दो, आगे से मैं कभी बीमार नहीं पड़ूंगी, मुझे मारना मत। इशिका को बस दर्द महसूस हो रहा था और ये दर्द उसे मालविका पहुंचा रही थी। वो लगातार उसका गला दबाए जा रही थी और वहीं इशिका अपने भ्रम में 5 साल से 6 साल की हो गई थी, जहां उसने मालविका के अत्याचारों को सहना सीख लिया था। तुझे मरना होगा और आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, तूने मेरे भाई को मारा, मुझे ना तुझे उस दिन ही मार देना चाहिए था, पता नहीं क्या सोचकर मैं तुझे जिंदा रखा। मालविका लगातार बड़बड़ाई जा रही थी तो वहीं इशिका अपने सपनों की दुनिया में खोई हुई थी। जब वो 9 साल की हुई तब मालविका की मार से उसने बचने का तरीका ढूंढ लिया था। वो उसे धकेलकर चली जाती थी, लेकिन जब मालविका वापस उसे पकड़ती तो उसे और भी ज्यादा पीटती थी। ये सब तब तक चलता रहा जब तक कि वो 12 साल की नहीं हो गई थी। 13 साल की होने पर उसने घर छोड़ दिया था और वो हाइट में लगभग मालविका के बराबर हो गई थी। उसने मालविका की मार सहना बंद कर दिया था। इधर मालविका लगातार इशिका का गला दबाए जा रही थी। अचानक वो अपने सपने से बाहर आई और पहले की तरह उसने मालविका को पूरा जोर लगाकर खुद से दूर धकेल दिया था। इशिका का चेहरा गला दबाने की वजह से लाल हो गया था और वो खुद की सांसों को नॉर्मल करने की कोशिश कर रही थी। इशिका ने पूरा जोर लगाकर मालविका को धक्का दिया था। वो कुछ कदम लड़खड़ाकर नीचे गिर गई थी। वो खुद को संभालकर वापस से इशिका पर हमला करने जा रही थी कि तभी दरवाजे पर क्रिस्टल आई। क्रिस्टल ने इशिका को उसे धकेलते हुए देख लिया था। उसने गुस्से में तेज आवाज में कहा, आखिर चल क्या रहा है यहां पर? ऐसा लग रहा था जैसे दोनों लड़ रही हों, जबकि कुछ देर पहले मालविका ने लेडी कांस्टेबल के सामने इशिका को अपनी बेटी बताया था। इशिका ने मालविका को धकेलने में अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, अब उसकी उंगली हिलाने की भी हिम्मत नहीं थी। क्रिस्टल उसके सामने आई तब इशिका ने बिल्कुल धीरे से कहा, तुम बिल्कुल सही वक्त पर आई हो, अब मेरा चेकअप करो, तुम्हें पता चल जाएगा मैं एनीमिक हो, प्लीज मुझे इन्फ्यूजन के लिए ले जाओ वरना मैं मर जाऊंगी। क्रिस्टल कुछ कहती उससे पहले मालविका ने चिल्लाकर कहा, अच्छा मजाक कर लेती हो तुम, झूठ बोलने की आदत गई नहीं ना तुम्हारी, अभी तुमने अपना पूरा जोर लगाकर मुझे धकेलकर जमीन पर फेंक दिया और तुम एनीमिक हो, बीमार होने का नाटक मत करो, यहां पर सच सामने आने पर सजा मिलती है। मालविका ने वही कहा जो कल रात क्रिस्टल ने उसे कहा था। क्रिस्टल ने भी इशिका को मालविका को धकेलते हुए देखा था। उसके दिमाग में आयशा की बातें ताज़ा हो गईं, जब उसने कहा था कि पीरियड्स में वो कमज़ोर हो जाती हैं और उसे एनीमिक बताकर उसकी जमानत कराई जा सकती है। क्रिस्टल ने गहरी सांस ली और सख्ती से कहा, बहाने बनाना बंद करो और चुपचाप लेटी रहो, अब मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली हूँ। क्रिस्टल ने मुड़कर लेडी कांस्टेबल को बुलाया और फिर मालविका की तरफ इशारा करके कहा, इसे वापस सेल में लेकर जाओ, ये यहाँ पर लड़ रही थी। मालविका को वहां से ले जाया जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में अभिमन्यु अपने लॉयर के साथ आ रहा था, उसके साथ दिशांक भी था। वकील ने अभिमन्यु से कहा, मिस्टर राजवंश, अगर आज भी हमारी अपील को खारिज कर दिया गया तो हमें फिर से नए सिरे से जमानत के लिए एप्लीकेशन देना पड़ेगा, इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। कुछ भी कहने से पहले अभिमन्यु ने दिशांक की तरफ देखा। दिशांक ने जवाब में कहा, हमारे पास एक दिन का टाइम और है, लेकिन उसके बाद हम बिल्कुल भी इंतजार नहीं कर सकते हैं। अभिमन्यु ने उसे देखकर बिना कुछ कहे सिर हिलाया। उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस भले ही नॉर्मल हों, लेकिन इस वक्त उसके दिल की धड़कनें बहुत तेज थीं। वो इशिका के लिए परेशान था। अभिमन्यु, दिशांक और वकील अंदर आ गए थे। तभी उन्होंने लेडी कांस्टेबल की बातें सुनी। वो इंस्पेक्टर माधव के पास आकर बोली, सर, उस लड़की इशिका की तबीयत सच में बहुत खराब हो रही है। ऊपर से उसके पीरियड्स शुरू हो गए हैं। पीरियड्स में लड़कियां एनीमिक हो जाती हैं, पर फिर भी हमें एक बार चेक करवा लेना चाहिए, कहीं हमसे कोई गलती ना हो जाए। लेडी कांस्टेबल की बात सुनकर दिशांक को झटका सा लगा। उसने हड़बड़ाकर कहा, क्या उसके पीरियड शुरू हो गए हैं? लेकिन उसमें अभी टाइम था। अगर उसके पीरियड शुरू हो गए हैं तो हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। हमने अभी उसे इन्फ्यूजन नहीं दिया तो गड़बड़ हो सकती है। दिशांक को खुद से बड़बड़ाते देखकर अभिमन्यु ने पूछा, क्या हुआ, तुम रुक क्यों गए, सब ठीक है ना? ना में सिर हिलाकर परेशानी के साथ कहा, कुछ भी ठीक नहीं है मिस्टर राजवंश, उसको पीरियड शुरू हो गए हैं और पीरियड से पहले इन्फ्यूजन लेना जरूरी है। ऐसी कंडीशन में मैंने आपको बताया था उसकी हालत और ज्यादा गिरने लगती है और इस वक्त उसके साथ कुछ ऐसा ही हो रहा होगा। अब हम क्या करें, उसे तो जमानत भी नहीं मिली है। अभिमन्यु ने एक पल उसके चेहरे की तरफ देखा और बिना सोचे समझे आगे की तरफ बढ़ने लगा। इस वक्त उसके चेहरे के भाव सख्त थे। दिशांक ने देखा अभिमन्यु आगे लॉबी में जाते हुए सीधे डिटेंशन सेंटर की तरफ जा रहा था। उसके इरादे क्या थे उसे कुछ कुछ समझ आ गए। वो जल्दी से अभिमन्यु के पीछे गया और बोला, मिस्टर राजवंश, आप पागल तो नहीं हो गए हैं? इस तरह अंदर घुसना क्राइम माना जाता है, आपको भी अंदर बंद कर देंगे। अभिमन्यु रुका और उसकी तरफ देखकर बोला, क्या तुम्हारे पास कोई और आइडिया है, या तुम्हारी बॉस एक दिन और इंतजार कर सकती हैं? बिल्कुल नहीं, एक और दिन बीता तो उसकी हालत खराब हो जाएगी। जमानत मिलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। एक दिन की देरी और हुई तो उसे बचाना मुश्किल होगा, दिशांक ने जवाब दिया।
दिशांक ने कुछ पल सोचा, फिर उसे समझ में आया कि अभिमन्यु जो कर रहा है उसके अलावा उनके पास और कोई रास्ता नहीं है। उसने गहरी सांस लेकर कहा, उनकी बीमारी वाकई अजीब है, कोई यकीन तक नहीं कर पाता। सबको यही लग रहा होगा हम झूठ बोल रहे हैं। आप जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है और मैं आपके साथ हूँ। दिशांक वहां अभिमन्यु से बात कर रहा था, तभी उसने देखा कि अभिमन्यु ने उसकी बात का जवाब भी नहीं गया और तेज कदमों से चलते हुए डिटेंशन सेंटर में इशिका की सेल के आगे पहुंच चुका था। गार्ड ने उसे रोकते हुए कहा, आप जानते हैं ना कि यहां बिना परमिशन के अंदर आने की इजाज़त नहीं है, आप अंदर नहीं जा सकते हैं मिस्टर। अभिमन्यु को उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, वो अंदर जाने लगा। वहीं उधर की तरफ शोर आता देखकर स्पेक्टर माधव जल्दी से दौड़कर गए और अभिमन्यु के पीछे गन पॉइंट करके कहा, मिस्टर राजपंच, यहीं पर रुक जाइए वरना मैं भूल जाऊंगा आपकी क्या पोजीशन है। अगर आपने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं गोली चला दूंगा। अभिमन्यु ने गहरी सांस ली और पलटकर उसकी तरफ देखा। दिशांक के भी दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। उसने जोश में कह तो दिया था कि वो अभिमन्यु का साथ देगा और वो जो कर रहा है वो सही है, लेकिन अब इस तरह खुद के ऊपर गन पॉइंट भी देखकर उसके भी होश उड़ गए थे। अभिमन्यु राजवंश कौन था ये किसी से छुपा हुआ नहीं था। उसकी जो भी पोजीशन थी उसके चलते माधव कभी भी उसे शूट नहीं कर सकता था। माधव ने उसे नरमी से समझाते हुए कहा, मिस्टर राजवंश, आपको यहाँ नहीं होना चाहिए था, आखिर आप यहाँ कर क्या रहे हैं? दिशांक माधव को ये बताने वाला था कि वो इशिका के लिए वहाँ आए हैं, लेकिन अभिमन्यु ने इशारे से उसे चुप रहने के लिए कहा और गहरी सांस लेकर बोला, मुझे बाथरूम जाना था और मिल नहीं रहा था, मैं गलती से इस तरफ आ गया। अभिमन्यु का जवाब सुनकर दिशांक हैरान रह गया। उसे पता था कि उसकी और इशिका की शादी काफ़ी अजीब तरीके से हुई है, लेकिन वो इस तरह इशिका का साथ छोड़ देगा इसकी उम्मीद उसने नहीं की थी। इंस्पेक्टर के हाथ में गन देखकर अभिमन्यु तो वापस पीछे की तरफ आने लगा था, लेकिन दिशांक इशिका को ऐसी हालत में अकेला नहीं छोड़ सकता था। दिशांक ने जोखिम उठाते हुए अंदर जाने का फैसला किया। वो अपने कदम बढ़ाने लगा, तभी माधव ने दिशांक से कहा, मिस्टर राठौर, क्या आपको बाहर जाने के लिए मुझे अलग से इन्विटेशन देना पड़ेगा? दिशांक ने सफाई देते हुए कहा, वो मैं। दिशांक ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि तभी अभिमन्यु ने माधव के हाथ से गन छीन ली थी और उसकी कनपट्टी पर लगा दी थी। अचानक ही पूरा मामला बदल गया था। अभिमन्यु ने अपनी पोजीशन की भी परवाह नहीं की और इशिका के लिए एक पुलिस ऑफिसर को गन पॉइंट पर ले लिया था, जो कि संगीन अपराध था।